न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में अनुराग अन्वेषी आपका स्वागत करता है। नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में पुलिसिया चरित्र की चर्चा होगी। एक तरफ तो पुलिस ने यूपी के उन्नाव में हुई दो बच्चियों की हत्या के बाद उसके परिजनों को अपनी कस्टडी में ले लिया है, लेकिन ऐसा किए जाने की वजह बताने से वह बचती फिर रही है। वहीं दूसरी तरफ जोधपुर के अस्पताल में भर्ती अभियुक्त आसाराम की सुरक्षा कितनी सख्त है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आश्रम में यौन शोषण के दोषी आसाराम की सह अभियुक्त अस्पताल में उनसे मिलकर बाहर निकल आती है और सुरक्षा में जुटे पुलिस वालों को इसकी भनक तक नहीं लगती। आज के पॉडकास्ट में हम आपको जानकारी देंगे किस केंद्रीय विद्यालय में नियुक्ति के अवसर हैं, और पॉडकास्ट के अंत में बताएंगे उत्तराखंड से आई वह सुखद खबर जिससे राज्य की महिलाओं की स्थिति थोड़ी और मजबूत होगी। फिलहाल उन्नाव की खबर। उन्नाव केस में यूपी पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। पीड़ित परिवार के लोग पुलिस कस्टडी में हैं और पुलिस उन्हें किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं दे रही। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि यूपी पुलिस लड़की के पिता को जबरन ले जा रही है। पीड़ित परिवार के लोगों को कहां ले जाया गया है या वे कहां हैं, जैसी कोई जानकारी पुलिस नहीं दे रही है। आपको बता दें कि उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र में तीन किशोरियां जंगल में बेसुध मिली थीं, जिनमें से दो लड़कियों की मौत हो गई थी। इस मामले में पिता ने हत्या का केस दर्ज कराया है। केस अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। पिता का आरोप है कि घटनास्थल पर मृतका और उनकी भतीजी के गले में दुपट्टा लिपटा था। तीनों लड़कियों के मुंह से झाग निकल रहा था। तीसरी लड़की अस्पताल में एडमिट है। राजस्थान के जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती यौन शोषण के गुनहगार आसाराम से मिलने के लिए गुरुवार को पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर उनकी शिष्या शिल्पी वहां पहुंच गई। बाद में इसका पता चलने पर आसाराम की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। वहीं गुरुवार को सोनोग्राफी कराने के बाद आसाराम को फिर से CCU में शिफ्ट कर दिया गया है। कल भी उनकी हार्ट संबंधित जाँच चल रही थी। कल सुबह ही सोनोग्राफी हुई और उसके बाद एंजियोग्राफी की गई। एंजियोग्राफी की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर आसाराम के बारे में आगे के इलाज का निर्णय लेंगे। आसाराम से मिलने के बाद उनकी सह अभियुक्त रही शिल्पी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आसाराम हमारे दादा की उम्र के हैं, वे इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन पर किसी को दया नहीं आ रही है। उन पर लगे सभी आरोप निराधार हैं। वह उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है। आपको बता दें कि तीन दिन पहले देर रात आसाराम को जोधपुर के MDM अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आश्रम की नाबालिग लड़की के यौन शोषण के मामले में आसाराम की शिष्या शिल्पी सह अभियुक्त रही है, उसे भी इस केस में सजा हो चुकी है। फिलहाल वह जमानत पर चल रही है। मुंबई में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए बृहन मुंबई नगर निगम यानी BMC ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार अगर किसी भवन में 5 या उससे अधिक कोरोना के मरीज पाए जाएंगे तो उसे सील कर दिया जाएगा। साथ ही वेडिंग हॉल, क्लब और रेस्तरा कोरोना की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए ब्राजील से लौटने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन रहना होगा। उन क्षेत्रों में COVID-19 टेस्ट की क्षमता बढ़ाई जाएगी जहां सकारात्मक मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। बता दें कि अमरावती में COVID-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर गुरुवार को जिला प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की। लॉकडाउन शनिवार को रात 8 बजे से सोमवार को सुबह 7 बजे तक के लिए रहेगा और इस दौरान बाजार और अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाएं सामान्य तौर पर खुली रहेंगी। जिलाधिकारी शैलेश नवल ने कहा, सप्ताह के बाकी दिन होटल और रेस्तरा सहित सभी प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना स्थल आगरा ने PRT, TGT और PGT शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इंटरव्यू का आयोजन 22 से 25 फरवरी 2021 के बीच किया जा रहा है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी को केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना स्थल आगरा की आधिकारिक वेबसाइट से इंटरव्यू का फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म भरने के बाद अपने शैक्षणिक दस्तावेज के साथ निर्धारित तिथि पर पहुंचना होगा। इसके लिए अभ्यर्थी स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट nowanagracant.kvs.ac.in पर जारी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, या चाहें तो इन नियुक्तियों की विस्तृत खबर हमारे न्यूज़ वेबसाइट hindi.news18.com पर पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत में सुधार है। वे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ICU से बाहर आ चुके हैं। अब उन्होंने RJD और बिहार की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारियां लेनी शुरू कर दी हैं। जानकारी के अनुसार ICU से वार्ड में शिफ्ट होने के बाद लालू ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को दिल्ली बुलाया है। RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ तेज प्रताप के बयान से लालू यादव नाराज बताए जा रहे हैं। पार्टी में डैमेज कंट्रोल में जुटे लालू तेज प्रताप को कोई सख्त हिदायत भी दे सकते हैं। गौरतलब है कि हाल ही में तेज प्रताप यादव ने RJD प्रदेश अध्यक्ष की जमकर खबर ली थी। तेज प्रताप ने कहा था कि जगदानंद सिंह उनकी अवहेलना करते हैं और उनके कारण ही उनके पिता बीमार पड़े हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी से लौटते ही CM हाउस में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इसमें सड़क हादसे रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। बैठक में CM ने निर्देश दिया कि किसी भी दोषी को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाए, जो गलती करेगा वह दंड पाएगा। CM ने कहा कि सड़क की मरम्मत और क्रेन की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से की जाए। वैकल्पिक मार्ग विकसित करने के लिए जल्द से जल्द कार्य योजना बनाकर अमल शुरू किया जाए। पूरे प्रदेश में बसों की फिटनेस और ओवरलोडिंग के संबंध में अभियान चलाया जाए। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन और परिवहन SN मिश्रा, प्रमुख सचिव लोक निर्माण नीरज मंडलोई मौजूद थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में हो रही सड़क दुर्घटना में अधिकांश मौत अत्यधिक रक्तस्राव होने और समय पर स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाने से हो रही है। ऐसे में रक्तस्राव को रोकने के लिए सभी थानों में मेडिकल किट की व्यवस्था करने, घायलों को उठाने के लिए स्ट्रेचर और निर्बाध रूप से सांस लेने में सहायता देने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह निर्देश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभागीय अधिकारियों को दिया। प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय में हुई बैठक में परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का शामिल थे। महिलाओं के अधिकार से जुड़ी एक बेहद अच्छी पहल उत्तराखंड सरकार ने की है। फिलहाल उत्तराखंड सरकार के इस फैसले से राज्य की 35 लाख से ज़्यादा महिलाओं को लाभ होगा। राज्य सरकार ने तय किया कि प्रदेश की महिलाओं को अब संपत्ति में बराबरी का हकदार बनाया जाए। बुधवार को CM त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं को संपत्ति में सह खातेदार बनाने पर अब मुहर लग गई है। अब पति की पैतृक संपत्ति में महिला का नाम भी खाता खतौनी में दर्ज करने को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अगर महिला का तलाक हो जाता है और उसका पति उसका खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, तब भी महिला को उसका लाभ दिया जाएगा। वहीं अगर महिला निःसंतान है या फिर उसके पति 7 साल से ज़्यादा समय से लापता हैं, तब महिला को पिता की संपत्ति में सह खातेदार बनाया जा सकता है। खाता खतौनी में नाम दर्ज होने के बाद इस आधार पर महिलाएं बैंक से अपने नाम पर लोन ले सकती हैं। त्रिवेंद्र कैबिनेट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि महिलाओं को बराबरी का हक मिलने की दिशा में एक और सकारात्मक कदम है। ये खबरें आप News18 Hindi के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए hindi.news18.com पर जाएं। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दे विदा। नमस्कार दोस्तों।